Today I'm going to talk about gharana. As you all know, in our classical music there is a great deal of scope for improvisation, as you have already seen and already heard. There are, of course, inviolable rules of rag and tal that everybody must follow. But within those, there are a number of dictates regarding how to fashion your recital. So singers are free to invent their own style. When one style becomes popular, the exponent teaches it to their disciple, and in this manner the styles invented several generations back can be heard even today. This style go by the name gharana, which literally means family. It is only in classical khyal music that we hear of gharanas. So why is it so? The answer is that music was mostly taught until recently by the guru-shishya method. Guru-shishya parampara kaha jata hai na? Guru-shishya method, under the teacher, taught only one student at a time. It is this system which nurtured our music and gave it continuity. All gharanas give meticulous attention to voice culture and emphasize riyaz or mehnat on the part of the student. Riyaz gives it correct intonation, steadiness, and ready adaptability. Bhai, riyaz hum log kyon karte hain? Riyaz ke maayne kya hai? Abhyas bhi kaha jata hai. Lekin us shabd ke arth kya hai? Jo kuch humne seekha hai, usko polish karna. Jo hamare dimag mein aata hai, wo gale se saaf sutra nikalna. रियाज के भी अलग अलग दिशाएं हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी. पहले हम लोगों ने केवल ये यहाँ पे बात की है कि रियाज के लिए हर एक गुरु हर एक स्टूडेंट से कहता है कि भाई रियाज करो, मेहनत करो. तो रियाज किस बात का होना चाहिए, ये एक और एक अपने में अलग विषय है. स्वर का रियाज, ताल का रियाज, आवाज़ का, आवाज़ तैयार करना, ये कहा जाता है कि भाई आवाज़ अभी तैयार हुई नहीं है ख्याल गायकी के लिए या ध्रुपद के लिए, तो ये आवाज़ तैयार करना, इसके मतलब क्या है, इसके मायने क्या है. जब आप फिल्म सॉन्ग्स सुनते हैं, उसके लिए एक आवाज़ की तैयारी अलग होती है. ध्रुपद धमार के लिए आवाज़ की तैयारी अलग ढंग से की जाती है, क्योंकि ये जितने भी गीत प्रकार हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं. उसकी बैठक अलग है, हमें इसमें ये चीज़ चाहिए, उसमें उस गीत प्रकार में वो चीज़ चाहिए. अलग अलग जो अलंकार हैं उसका भी प्रयोग हर एक गीत शैली में अलग प्रकार से होता है. तो रियाज को अभी हम लोग केवल यहाँ पे इतना ही समझते हैं कि जब गुरु एक व्यक्ति को सिखाता है तो उस विद्यार्थी में क्या कम है, क्या ज़्यादा है, क्या अच्छाई है, उसके उसका गले का धर्म कैसा है, आवाज़ का धर्म कैसा है, क्या क्वालिटी का आवाज़ है, उसकी सोच कैसी है, हम जो बता रहे हैं उसका पिकअप कैसा है, ये बहुत सारी चीज़ें वो क्लोजली उसको देखता है, परखता है, और फिर उसके हिसाब से उस विद्यार्थी को रियाज करने के लिए कहता है. यदि चार विद्यार्थी बैठे हों तो वो अलग ढंग से अलग अलग को कहेगा. वो कहेगा तुम्हारे गले में तान अच्छी है, लेकिन आलाप के लिए तुम्हें रियाज करना है, कैसे करना है ये बताते हैं। दूसरे को कहेगा कि देखो तुम्हारे में आलाप अच्छा है, तान के लिए ज़रा कुछ करो। तो कहने का मतलब यह है कि एक विद्यार्थी के साथ में ये जो पहले ज़माने में काम होता था वो आज ज़माने में उतना समय नहीं है, ना शिष्य को है और ना गुरु को है, शिष्य को भी नहीं है समय। खैर उसको हम लोग अभी बात को रख देते हैं अलग। तो रियाज का महत्व बहुत है। सो अनदर क्वालिटी एडेड टू द वॉइस बाय रियाज इज पावर। ये जो अभी हम कह रहे थे वजन, वजन कहते हैं भाई बड़ी इसकी वजनदार आवाज़ है। तो भैया वजनदार कौन सा, मतलब क्या वजन उठा रहा है, वो अभी हम लोग सब सुनेंगे। या फोर्स, इसके गाने में बड़ा फोर्स है, फोर्सफुली कैसा आवाज में जोश है। एंड दिस इज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। सो सिंगिंग कैन बी इफेक्टिव ओनली व्हेन द वॉइस हैज एक्वायर्ड वजन। यहां पे यूज किया है इफेक्टिव, उसका इफेक्ट काफी देर तक रहे इसके लिए उसकी आवाज में वजन होना आवश्यक है। तो ये सब चीजें किससे आएंगी, बाय डूइंग रियाज, मेहनत। फीमेल वॉइसेस आर जनरली स्वीट, बट स्वीटनेस इज नॉट ऑल। ओनली कंटिन्यूअस रियाज कैन गिव देम द नेसेसरी पावर एंड मेक देम म्यूजिकली इफेक्टिव। ओके नाउ, ईच घराना इमर्जेस फ्रॉम द पिक्यूलियर क्वालिटी ऑफ द वॉइस ऑफ इट्स फाउंडर। इस घराने के ये बड़े गायक, उस घराने के वो बड़े गायक, तो उस गायक में या उस गायिका में क्या चीजें थीं, क्या क्वालिटीज थीं, क्या गुणधर्म थे, सभी में मतलब आवाज लगाने से ही चालू हो जाता है। सो दिस मीन्स दैट द गुरु नोइंगली और अनोइंगली ट्रांसमिट्स टू द डिसाइपल्स वॉइस मैनी ऑफ हिज इंडिविजुअल ट्रेट्स। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे घराना, घराने में क्या क्या चीज़ें अच्छी भी आती हैं और बुरी भी आती हैं, ये थोड़ा सा हम जरा यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। द गुरु मे हैव हैड अ प्योरली पर्सनल और फिजियोलॉजिकल रीजन वाई ही डेवलप्ड अ पर्टिकुलर ट्रेट। जिस ढंग से वो गा रहा है उसने क्यों ऐसा गाना चालू किया। फॉर एग्जाम्पल इफ गुरु इज एस्थमेटिक, उसको भैया किसी भी प्रकार की एलर्जी है, बिकॉज ऑफ हिज इनएडुकेट ब्रेथ ही वुड प्रोड्यूस अ ब्रोकन डिसकंटिन्यूअस साउंड टोन। ओके, सो इट इज क्वाइट नेचुरल दैट थ्रू कॉन्स्टेंट एसोसिएशन द डिसाइपल टेक्स ऑन दीज ट्रेट्स। Some disciples merely pick up the defects of the guru and cultivate them as sacred symbols of the gharana. So the student must learn to avoid vocal defects of the guru, number one. Number two, the guru on his part must be conscious of his defects and must give up the idea that his peculiar way of voice production is the core of his style. The student must consider that his guru made his style interesting in spite of the shortcomings of his voice. हाँ, यहाँ पे ये बात बहुत विशेष है। गुरु में जो कुछ भी जो वो प्रस्तुत करता है उसमें यदि उसके कुछ फिजियोलॉजिकल रीजन हो, ये सब कुछ होते हुए भी वो उसने अपनी एक अलग शैली बनाई, ये डिसाइपल को, स्टूडेंट को भी समझना चाहिए कि ये सब कुछ होते हुए भी उन्होंने ऐसा काम किया, लेकिन यदि उसमें ये तकलीफ नहीं है तो वो जबरदस्ती एस्थमेटिक यदि वो गुरु है तो उसको इस तरह से गाने का कोई कारण नहीं है। सो द स्टूडेंट शुड नोट दैट इफ दे कैन सिंग इन अ नेचुरल वॉइस दे कैन ऑफकोर्स परफॉर्म बेटर। इन अ बेटर वे. तो ये दो बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए. मैं हमेशा जब सिखाती हूँ तो हमेशा ये मैं बताती हूँ कि मेरी आवाज़ का टेक्सचर आपकी आवाज़ से अलग है. भाई ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि मैं जैसा, मेरी जैसी आवाज़ का एक टेक्सचर हम कहेंगे, टोन, उसका टोनल क्वालिटी, वो वैसा ही दूसरा का भी हो. मेरी आवाज़ की पिच जो है वो भी अलग हो सकती है दूसरे हमारे सामने जो बैठा हुआ विद्यार्थी है ना. अच्छा, मेरी सांस लंबी है या कम है उसके साथ में यदि उसकी सांस अच्छी है या कम है, जो कुछ भी है, तो मैं जैसा एक लंबे वाक्य मैं बना सकती हूँ. आई कैन सिंग वन फ्रेज इन वन ब्रेथ. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो दूसरा भी ऐसे ही गावे. ओके, ठीक है, तुम उसको दो उसमें बांट दो, लेकिन उसका तुम आभास तो निर्माण कर सकते हो. ये एक हमको यहां पे कहना है. तो ये एक मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि इस तरह की भी गलतियां स्टूडेंट करते हैं और फिर उनको ये लगने लगता है कि ये जो वॉइस प्रोडक्शन है, ये वॉइस कल्चर है, ये वॉइस टेक्निक है, यही उस घराने की पहचान है. ये थोड़ा सा यहाँ पे बहुत समझ करके कॉशियसली देखना चाहिए दोनों ने, गुरु ने भी और शिष्य ने भी. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच हेल्प अस आइडेंटिफाई एन आर्टिस्ट घराना और स्टाइल. तो मैंने पांच पॉइंट्स ऐसे निकाले हैं. नंबर वन, वॉइस प्रोडक्शन. वॉइस प्रोडक्शन में मैं यहाँ पे केवल चार घराने के बारे में बोल रही हूँ जो विशेष रूप से आप लोग अलग अलग कलाकारों को सुनते हैं. और घराने हैं लेकिन इतना मेरे पास अभी समय भी नहीं है, लेकिन बेसिक चार घराने जो हैं उनके बारे में बोलूँगी. तो पहला उसका जो है पॉइंट नंबर वन, वॉइस प्रोडक्शन. सबका वॉइस प्रोडक्शन घरानों का अलग होता है. नंबर टू, स्टाइलिंग ऑफ द सॉन्ग कॉम्पोजिशन. सॉन्ग मतलब बंदिश कर दीजिए, उसको कैसे बढ़ाते हैं. मैनर ऑफ इलैबोरेटिंग द राग. पैटर्न ऑफ तांस. सिलेक्शन ऑफ रागास. वो सिलेक्शन ऑफ राग जो है वो प्रचलित राग है, पॉपुलर है, सिंपल है, सिद्ध राग हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, जोड़ राग हैं. जोड़ राग मतलब दो राग भी हो सकते हैं, एक खट करके राग होता है, वो खट में छह राग होते हैं. तो सिलेक्शन ऑफ रागस एंड सिलेक्शन ऑफ ताल, ये हमारे पास ऐसे छह पॉइंट्स हमने निकाले हैं. उसके आधार पर घरानों के बारे में भी हम लोग सुनते हैं. द फोर घरानास विच आर वाइडली हर्ड टूडे. आप लोग कोई घराना जानते हैं? ग्वालियर, जयपुर, आगरा, किराना. गुड, बहुत अच्छी बात है. तो ये चार घराने के बारे में हम लोग अभी बोलेंगे. वैसे तो और भी घराने हैं, पतियाला घराना, ओके, भिंडी बाजार, मेवाती, ओके, सहसवान घराना, रामपुर सहसवान घराना. गुड, इंदौर घराना एक है अमीर खान साहब का, तो उसके बारे में अभी हम लोग नहीं बात करते. पहले ये जो चार मेन घराने हैं उनके बारे में बोलते हैं. ओके, द किराना घराना. आई विल स्टार्ट विद किराना घराना. द घरानाज आर नोन बाय द विलेज और सिटी, जैसे मैंने आपको बताया, टू विच देयर ओरिजिनेटर बिलोंग्ड और ट्रेस देयर रूट्स. सो दिस घराना डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम किराना नियर कुरुक्षेत्र, द बर्थ प्लेस ऑफ खान साहब अब्दुल करीम खां. आप लोगों ने सुना है अब्दुल करीम खां साहब का? ओके. इनका समय था 1872 टू 1937. हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ दिस घराना. ही माइग्रेटेड टू महाराष्ट्र व्हेन ही वाज क्वाइट यंग to serve as a musician, first at the Baroda court and subsequently at the Mysore ke darbar mein. According to Abdul Karim Khan, this style of singing was influenced by Tantkari Ang. The distinctive style of playing music on the bean, with emphasis on the resonance of notes and maintaining note continuity through meend and the gamak. अब ये जो बीन जो है ये पहले, अब तो ये वाद्य भी नहीं है, ध्रुपद धमार के साथ में उस जमाने में ये हुआ करता था, आज बीन वादक कोई नहीं है. जब ध्रुपद धमार ये बात कही जाती है तो उसके साथ में मींड और गमक ये अपने आप ही आती है. सो इन एडिशन इम्पॉर्टेंस वॉज ऑल्सो गिवन टू आलाप एंड द विलंबित लय इन द कोर्स ऑफ द परफॉर्मेंस. अब हम लोग और भी कुछ कुछ सुनेंगे, जब जिस आर्टिस्ट का हम लोग सुनेंगे उस समय में भी कुछ मैं बोलती जाऊंगी. हम लोग पहले केवल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं कि क्या 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 उस घराने की विशेषताएं होती हैं. द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ दिस घराना आर इट्स फोकस ऑन द नोट एंड इट्स मेलोडियसनेस एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द आलाप एंड द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द ख्याल टेकिंग वन नोट एट अ टाइम फॉर प्रेजेंटेशन दस ग्रेजुअली रिवीलिंग द राग फॉर्म. अब आलाप में भी एक पद्धत होती है, एक स्टाइल होती है, मेरुखंड पद्धति. मेरुखंड एक एक स्वरों को इंट्रोड्यूस करते हुए उसी के नजदीक घूमना. वो कैसे, जैसे यदि कल आप लोग वहां पे थे, सीमा शिरोडकर जी ने आप लोगों को बताया था, रेत sani nida sani re nira sani dhani re dhani dare sa nida nira dha Dhani Dhani Gare Nega Nere Dhani Dagare. केवल इसी तीन चार स्वरों में ऊपर नीचे हम ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ने वाली जैसी बात होती है ना. एक ये मेरुखंड पद्धति से आलाप होता है और एक आलाप होता है जहां पर आप फ्रेजेस से बात करते हैं, वाक्य से. अभी हम लोग सब सुनेंगे, उसके लिए राग भी फिर अलग ढंग से उसका सिलेक्शन होता है. अब जैसे यमन, ये इसको बड़ा राग कहते हैं, भैरव, तोड़ी, सारंग, ये बड़े राग हैं. बड़े राग मतलब क्या, बहुत स्कोप है. यमन का लिए मैंने आपको शायद पहले बताया था कि यमन में आप कितनी भी गलतियां करें, सुरों में नहीं, रे में रुक जाएं, ग में रुक जाएं, म में रुक जाएं, प में रुक जाएं, ध में रुक जाएं, नी में रुक जाएं, वो यमन अपनी आइडेंटिटी छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहता है मैं यमन हूँ, ठीक है आप और कुछ भी करो, हाँ ऋषभ कोमल मत लगाइए, गंधर्व कोमल जो वर्जित हैं वो मत लगाइए, लेकिन ऐसे सब नियम और रागों में नहीं होते, ठीक है। तो इनको कहते हैं बड़ा राग, बहुत स्कोप है, संपूर्ण है, दूसरी बात संपूर्ण है। जो तोड़ी में एक ऐसे संपूर्ण राग तोड़ी भी है, उसी के साथ में मुल्तानी जो है स्वर वही है, ऋषभ कोमल, गंधार कोमल, धैवत कोमल, मध्यम तीव्र, पंचम है, निषाद शुद्ध है, मुल्तानी में भी वही राग स्वर है, तोड़ी में भी वही है। जहां तोड़ी संपूर्ण है वो ओडव संपूर्ण है मुल्तानी, एक बात। दूसरी बात, उसमें ऋषभ को अलग ढंग से ट्रीटमेंट दी जाती है, उसके कुछ वाक्य हैं कि ये ऐसे ही आएगा, यदि वहां पे आप ऋषभ में रुक गए, वो मुल्तानी कहता है मैं मुल्तानी नहीं हूं, कुछ आपने गड़बड़ करी है, देख लीजिए फिर से संभलिए, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये जो वन स्टेप में या एक के बाद एक के ये जो स्वरों का ये जो मेरुखंड पद्धति से जो आलाप होता है वो कुछ रागों में हो सकता है, कुछ रागों में नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इन दिस घराना द प्रैक्टिस ऑफ रेंडरिंग द आलाप एज बोल आलाप यूजिंग द बोल्स ऑफ द बंदिश एंड नॉट इन आकार इज फॉलोड एंड द जस्टिफिकेशन वॉज बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ द राग एंड द बंदिश गेट्स ब्रोकन वेन द आलाप इज संग इन आकार विदाउट यूजिंग द वर्ड्स ऑफ द चीज। ये एक उन्होंने बात कही, भाई हमने स्थाई गा दी, आलाप हमने जब लेना चालू किया तो हमने आकार में लेना चालू किया, जब स्थाई गा रहे थे तो उसमें शब्द थे, साहित्य था, उसको हम शब्द कहते हैं क्योंकि बहुत साहित्य ऐसा होता भी नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि एक लाइन में छुपा हुआ कुछ अर्थ है, ऐसा कुछ नहीं होता, द्वयर्थक नहीं होते, एक ही अर्थ है, क्योंकि उसमें कोई बहुत ज्यादा अर्थ वाला ऐसा उसमें कुछ कहा भी नहीं गया है, एक छोटी सी लाइन बता दी कि भाई देखो ऐसा ऐसा है। तो स्थाई गाने के बाद जब आपने आकार में आलाप चालू किया तो वो कहते हैं कि यहां पर ऐसा उनका जस्टिफिकेशन है कि हम लोग स्थाई के अक्षरों को, स्थाई के जो बोल हैं उन्हीं को लेकर के हम लोग करेंगे, आकार में करने से उसकी कंटिन्यूटी जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, इसीलिए हम लोग आकार में नहीं कहते, ऐसा वो बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं मतलब हमने भी सुना है, जो हम लोग सुनने वाले हैं उसका ही हमने आपको बता रही हूं। ओके, किराना सिंगर्स फोकस ऑन द, बड़े मजेदार बात है, अब देखिए, किराना सिंगर्स फोकस ऑन द सेंटिमेंट एंड मूड ऑफ द राग एंड साहित्य एस्पेक्ट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट इन दिस घराना। अरे आपने स्थाई गाई, उसके बोल आपने लेने चालू किए और फिर आप ये कह रहे हैं, फिर हमने ये सुना, बहुत से आर्टिस्ट लोग को हम सुनते हैं कि वो जो बोल कहते हैं वो उतनी स्पष्टता से नहीं होता, नंबर वन वो क्या बोल रहे हैं, कान्हा है या क्या है, कुछ नहीं समझ में आता। अच्छा अब जब स्थाई के बोल जैसे जैसे उसका क्रम है वो वैसे आने चाहिए, वो केवल उसके जो मुखड़ा है उसी को दोहराते रहते हैं, वो पूरी स्थाई आनी चाहिए ना, स्थाई के पूरे बोल आने चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि केवल उसका हम लोगों ने मूड लिया है। अब आज सो बना बना आयो लाड लड़ावन दे, अब इतना भी हमको बोलना, आज सो बना बन आयो, बस खत्म। इसके साथ में हम उसके अंतरे के भी बोल ले सकते थे, बन के सीस मोतियन को सहरा है ना, बनरी के मन भाए, लेकिन हमने वो नहीं लिया, It's not so important in this gharana, kyunki hum log sunenge abhi. The number of bandishes are also limited in the Kirana repertoire as compared to the Gwalior gharana, which takes pride in its large number of bandishes. Gwalior gharana mein bahut sari bandishes hain. Humne aapko bataya 15-15, 20-20 bandishes hona koi bahut hi special baat nahi hai. ठीक है, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है, इतना तो होना ही चाहिए. बिसाइड्स दिस, किराना म्यूजिक ऑल्सो हैज ग्रेटर इमोटिव अपील बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन इन सिंगिंग द स्वरास. अब ये इमोटिव अपील हम लोग जैसे जैसे हम लोग हर एक आर्टिस्ट का हम लोग थोड़ा सा सुनते हैं, क्योंकि ये कोई एनालाइज करने वाली बात नहीं है. उसका गाना बड़ा भावना प्रधान है भाई, बड़ा फीलिंग से गाता है, बड़ा इमोशनल है, तो आप सुनेंगे. द वराइटी ऑफ तालाज आर लिमिटेड. एक ताल, मोस्टली एक ताल, झप ताल और तीन ताल, दीज आर द मेनली ताल्स यूज फॉर सिंगिंग द बंदिश. ओके, नाउ द रिपर्टवार ऑफ रागास लाइक शुद्ध कल्याण, दरबारी, मालकंस, भीमपलासी, तोड़ी, मियाँ मल्हार, पुरिया कल्याण, विच आर वेल सूटेड फॉर आलापचारी. अब इसमें हमीर, बसंत, कामोद ये राग नहीं आए, नंद ये राग नहीं है, हाँ, विच आर वेल सूटेड फॉर आलापचारी, जो मैंने अभी कहा, दरबारी, मालकंस, भीमपलासी, शुद्ध कल्याण. सो दिस इफेक्ट इज फर्दर हाइटेंड by tuning the tanpura for certain ragas to the seventh note, that is nishad, rather than the pancham, as is usually done. ये आप लोगों ने नोटिस किया है, पंडित जी के कॉन्सर्ट में आप लोगों ने सुना होगा, पंडित भीमसेन जी के कॉन्सर्ट में, उनके भी तानपुरे बड़े सुंदर बजते हैं. और उनके तानपुरे में जो पहला तार होता है वो हमेशा देखिए ज्यादातर, हाँ, अब निषाद जिस राग में वर्जित है वो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जिसमें निषाद शुद्ध लगता है, अब पूरिया कल्याण यदि वो गा रहे हैं तो हम लोग पंचम में मिलाएंगे, वो निषाद में मिलाएंगे. यदि यमन हम लोग गा रहे हैं तो हम लोग पंचम में मिलाते, वो निषाद में मिलाएंगे. बिहाग में भी वो निषाद में मिलाएंगे. निषाद में पहली तार मिलाने का उनके घराने में ये विशेष बात देखी गई है. अनदर एस्पेक्ट ऑफ द किराना घराना इज दैट इट इज वन ऑफ द फ्यू घरानाज ऑफ ख्याल गायकी विच इंक्लूड्स ठुमरी सिंगिंग एज अ पार्ट ऑफ इट्स परफॉर्मेंस. ठुमरी सभी के घराने में गाई जाती ऐसा नहीं है, इनके घराने में देखा गया है, बहुत से कलाकार गाते हैं. हीराबाई बड़ोदेकर, आपने जरा, मैं थोड़ा सा पूछती हूँ कि कितने किराना घराने के कुछ गायकों का या गायकों का आप लोगों ने कुछ नाम आप दे सकते हैं, पुराने या नए. हीराबाई बड़ोदेकर आप लोगों ने सुना है, उनकी बहन सरस्वती राणे, उनके भाई और उनके गुरु भी सुरेश बाबू माने, और सुरेश बाबू माने जो थे वो, उनको, उनसे प्रभा अत्रे, श्रीमती प्रभा अत्रे जी ने सीखा, माणिक वर्मा जी ने सीखा. माणिक वर्मा जी की बहुत सी रिकॉर्डिंग्स हम लोग सुन सकते हैं. और ऑफ कोर्स आज जो किराना घराने के जो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, पंडित जी हैं हमारे, पंडित भीमसेन जोशी जी हैं, फिरोज दस्तूर जी हैं, एंड ऑफ कोर्स गंगूबाई हंगल जी हैं. So they are all Kirana Gharana's artist. Achha, Pandit Bhimsen Joshi is regarded as a representative of the Kirana Gharana. Aur aap logon ne kabhi attend kiya hoga Savai Gandharv Mahotsav mein, wahan pe hamesha Gangubai ji ka program concert hota hi hai, Firoz Dastur ji ka hota hi hai, aur ant mein Pandit ji baithte hain. Lekin Pandit ji ke gaiki mein, he is not a pure Kirana Gharana artist. He has other influences on his style of singing. He believes, अब कौन से influences हैं, जब हम आगे आगरे घराने के बारे में बताएंगे, जयपुर घराने के बारे में बताएंगे, ग्वालियर घराने के बारे में विषय में बोलेंगे तब आपको बताएंगे. लेकिन what he believes that Gharana is a matter of convenience only. What you learn from your guru has to be supplemented by individual genius, otherwise one will not have anything worthwhile to say. ऐसा उनका कहना है. घराने की गायकी सीखना आवश्यक है, लेकिन उसमें यदि आप अपना कुछ जोड़े नहीं, आप अपना कुछ एडिशन ना करें, तो वो पूरी नकल होगी. जो गुरु ने सिखाया हम वही गा रहे हैं. थोड़ा सा उसमें आँख नाक कान मुंह सब खोल के समझ के अपनी भी हमारे में हमारे आवाज़ का क्या गुणधर्म है, हम उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये उसमें थोड़ा थोड़ा हमेशा हर एक आर्टिस्ट ने ऐड करना चाहिए, ऐसा पंडित जी का मत है. अब हमको लगता हम लोग थोड़ा सा किराना घराने का सुनते हैं. कौन है पहले? गंगूबाई जी. हाँ ओके, अभी हम लोग के पास एक है, हमारे पास एक्चुअली तो मी आता आग्रा घराण्यापासून सुरू करू का? ओके फाइन. ओके ओके ओके. पण भीमसेनजींचं आहे माझ्याकडे ती, पण ती अब बड़े मजेदार बात है. हीराबाई जी का मेरे पास है, वो यहाँ पे नहीं है सॉरी, वो पूना में कुछ कुछ मेरी अभी रिकॉर्डिंग्स कुछ अभी दोनों तरफ मेरे घर चल रहे हैं. तो हीराबाई की आवाज़ में आवाज़ की क्वालिटी है, उनकी टोनल क्वालिटी अलग है, गंगूबाई जी की टोनल क्वालिटी अलग है, पंडित भीमसेन जी का आप लोगों ने हमको लगता सभी ने सुना होगा, सभी ने सुना ही होगा, मैं ऐसा सोच के चल रही हूँ. फिरोज दस्तूर जी का भी आवाज़ की कहनी है कि इसमें इनके गाने में जो एक हम लोगों को मुझे जो कुछ भी समझ में आया, वॉइस मॉड्यूलेशन की जो इन लोगों ने विचार किया है. अब जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन ऐसी बात नहीं है कि और घराने वाले लोग करते नहीं हैं, सभी ने थोड़ा जरूर थोड़ा कम ज्यादा किया ही हुआ है. ये जो एक पावर है, हाँ, मैं ग्वालियर घराने को बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं पूरा ग्वालियर घराना के सभी एस्पेक्ट्स लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है. मेरे पिताजी पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी से सीखे. पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ग्वालियर घराने को बिलोंग करते थे. उनके गुरु बालकृष्ण बुआ इत्सलकरण जी कर पिताजी ने मुझको सिखाया. लेकिन उसके बाद ही वॉज अ वेरी ओपन माइंडेड माई फादर एंड माई गुरु. उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मैं तुमको सिखा रहा हूँ, लेकिन और घराने में भी ये जो चीज़ें हैं ये बहुत अच्छी हैं, तुम्हारे गले में वो कैसे फिट होती हैं ये तुम जानो. लेकिन उन्होंने हमको, मुझे कभी भी ये मत सुनो या यही सुनो, ऐसा कभी नहीं कहा. और उसके आगे मैं जाती हूँ, मेरे पिताजी का और मेरे में 48 इयर्स का डिफरेंस, तो मतलब कितने जनरेशन के हमारी बातें हो रही हैं. देखिए, वो मुझसे 48 साल बड़े थे, मतलब इतना जनरेशन गैप था. उस जमाने में भी उन्होंने मुझे ये कहा कि अरे ये तो लता जी के ये बड़ा अच्छे, इसमें देखो खटका मुर्की कितना अच्छी बात वो कर रही हैं, कितना अच्छा एक्सप्रेशन है उसका. उस जमाने में मेरे पिताजी के साथ में सीखे हुए पंडित ओमकारनाथ जी, नारायण राव जी, पंडित विनायक बुआ पटवर्धन जी, वो कट्टर घराने के थे. उन्होंने अपने बच्चों को, मुझे लगता है, डेफिनेटली ये नहीं कहा होगा कि आशा भोसले का और लता जी का सुनो, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा सुनो वो भी अच्छा है. ही वॉज अ वेरी ओपन माइंडेड पर्सन. बहुत नए नए उन्होंने प्रयोग भी किए, बच्चों को कैसे सिखाया जाए, थोड़ा उससे जो बड़ा है उसको कैसे सिखाया जाए, जो गाने को बहुत ही प्रोफेशन लेना चाहता है उसको कैसा सिखाया जाए. हर एक लेवल के स्टूडेंट के लिए अलग ढंग से सिखाना चाहिए, पहले यही एक विचार नया है, ये उन्होंने बहुत प्रयोग किए. तो मेरी बात छोड़ दीजिए, बट आई डेफिनेटली बिलोंग टू ग्वालियर घराना. अब हम लोग थोड़ा सा आगरे घराने के ऊपर जरा विचार करते हैं. आज मैं ये थोड़ा सा बताने के बाद एक और हम लोग का सेशन होवे तो एक एक फिर मैं जरा और भी अच्छी रिकॉर्डिंग, जरा अच्छे साउंड सिस्टम हो तो हम लोग उसके ऊपर जरा थोड़ा सा अच्छा सुन सकते हैं. ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट द आगरा घराना. आगरा घराने के लकीली हमारे पास बहुत हैं. फैयाज खान साहब हैं, रातनजनकर जी हैं, गिंडे साहब हैं, कैकिनी जी हैं, ललित राव हैं. सो 1, 2, 3, 4, 5. द आगरा स्टाइल ऑफ ख्याल गायकी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद फैयाज खान साहब. उनका समय था 1886 टू 1950. However, the founder of the Agra Gharana were originally singers of Dhrupad and Dhamar. And Khyal singing came during 19th century by Ghagge Khudabaksh of Gwalior Gharana. So therefore, Agra Gharana reflects Laikari. अब जब ध्रुपद धमार बोल दिया तो लयकारी तो उसी के साथ में आएगी. रिदमिक परफेक्शन बिकॉज ऑफ द रिगरस ट्रेनिंग इन द ध्रुपद धमार स्टाइल. ध्रुपद इन्फ्लुएंस ऑन द आगरा स्कूल रिजल्टेड इन द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ नोम तोम आलाप एज अ मीन्स ऑफ इलेबोरेटिंग द राग एंड क्रिएटिंग द मूड ऑफ द राग. इन आलाप द शेप ऑफ द राग इज ब्रॉडली आउटलाइंड थ्रू key phrases, key phrases and structures, rag vakya, swar vakya, rather than in a note by note manner as in the kirana gharana. Yahan pe dekhiye ab thoda sa alag ho raha hai. While maintaining rag purity, it requires the differentiation from other similar ragas. अब ये जो राग वाक्य कहे उसके नजदीक और जो राग हैं उससे आप उसको अलग कैसे करेंगे. सम प्रकृतिक राग बोलते हैं, सम प्रकृति. इसका बढ़िया इस राग का इसका राग का दोनों को बड़ा अच्छा जुड़ता है. प्रकृति एक है लेकिन फिर भी अलग है. बट वन शुड नॉट फॉरगेट द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द राग. The Agra Gharana is very alert about the distinction that exists between ragas and pays great attention to the emotional purity of the rag. अब हम लोग थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी कहा, कि key phrases and structures. यदि हम ऐसा कहें कि ये एक phrase है, ये हर एक चार पांच रागों में आती है. क्या है वो फ्रेज? रे पद प ठीक है. केवल इसी फ्रेज को लिया. अब इस फ्रेज को लेने के बाद हम एक चार पांच राग अलग कर सकते हैं. कैसे? राग बदल गया. ये भी हम उसमें जा सकता है. ये दो हो गए. ये कौन सा राग था? छाया नट. छायानट के उल्टा. छायानट ऐसे जा रहा है, ये मुंडी ऊपर करे. सा मरे रे प परे छायानट परे कामो नीचे से ऊपर. रे ना लेकिन आ कायम आ, 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 आ,
कबाब।
तीन राग हो गए, प ध प प सा, इसी में है ना। हमीर हो गया। एक दो तीन चार हुए। नंद, देखिए वो वाली फ्रेज कायम है, उसके बाद सब कुछ अलग अलग कुछ कुछ हो रहा है। एक ये तरीका है, ठीक है। एक दूसरा तरीका, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पूरिया, सोहनी और मारवा तीनों के स्वर एक ही हैं, ऋषभ कोमल, मध्यम तीव्र, धैवत शुद्ध, पंचम नहीं है, निषाद शुद्ध है, रे कोमल और मध्यम तीव्र, वही स्वर हैं, लेकिन उसका कॉमा अलग है, ठीक है। तो ये तो काफी अलग अलग समझ में आ जाते हैं। ये क्या हुआ? सारे गप धसा साध प गरे सा, मनी वर्जित। एक हमारे बहुत अच्छे तबला वादक हैं, कहने लगे पूना में आजकल मनी वर्जित है राग, भूख बहुत जोर से चल रहा है, मनी MONEY मनी वर्जित। हाँ ठीक है, जाने दीजिए। तो देशकार भी राग है।
गर सा
तो रे गर सा रे सा रे ग। ये जो हम रे का यहाँ पे जो उपयोग कर रहे हैं भूप में, वो वहां पे सा ग प ग प ग प ग सा एक परिवर्तन हुआ। दूसरा परिवर्तन धैवत पर हम ज्यादा रुक रहे हैं, धैवत पर न्यास है, यहां पर गंधार पे है, स्वर वही है, बंदिशें भी फिर उसमें अलग ढंग की होंगी। ऑफ कोर्स भूप जहां रात्रि का राग है और जरा थोड़ा सा जरा ऐसे फैला हुआ है वहां पे देशकार जरा थोड़ा सा रोशनी है, उसमें रोशनी है, जल्दी से चलो काम, इतना आराम वाला नहीं है। मतलब प्रकृति में थोड़ा सा फर्क हो गया। तो इस तरह के जहां एक ही स्वर है लेकिन उसका इम्फेसिस थोड़ा सा कहिए, अब जैसे देखिए एक बहुत अच्छी बात है, कौन कौन से स्वर लगे, मध मध्यम तीव्र, ध कोमल, ध सा नि ध सा ऋषभ कोमल, सा नि ध प म ग म ग म ग र सा सा म म ग ग म ध नि ध ध नि सा नि ब बसंत है ना। अब वही स्वर, मतलब ऋषभ कोमल गंधार शुद्ध मध्यम दोनों, लेकिन मध्यम दोनों शुद्ध मध्यम का केवल सा म म ग इतना ही। अब इसी मध्यम को लेकर यदि हम कुछ और करने लगे, सा म प ग म म नि द ध नि सा नि द नि सा र सा र ग र ग र सा नि र सा नि द नि सा नि द प म ग म ग। कुछ गड़बड़ किया वीणा ताई ने, अभी जाते समय तो अच्छा से गई है बाहर में, फिर आते समय क्या हो गया, बसंत में आ गई, तो बसंत बहार, ये बसंत बहार हुआ जोड़ राग। बसंत बहार में दो रे दो ग दो म, पंचम भगवान की कृपा से एक ही है, दो ध दो नी सा एक, तो 12 स्वर लग जाते हैं। दोनों एकदम अलग नेचर के राग हैं, उनको लेके मिला दिया तो वो बात अलग हो गई। हम लोग बसंत की बात कर रहे थे। अब परज एक राग होता है, सा ग आ
रे सा रे नि सा नि ध नि ध प ध प म ग म ग म ग रे सा सा ग ग म ध नि सा रे नि सा नि ध नि ध प प
pamagamadani dapa a a ha. Iski speed aur Basant ki speed kuch alag hai. ठीक है, तो स्वर वही रहे लेकिन लहजा कहने का बात लहजा अलग हो गया. तो बहुत अच्छा, मेरे पिताजी ने इसको इतने अच्छे ढंग से एक उदाहरण पे मुझे समझाया. बड़ी जल्दी मची हुई है परच में, रुकने को तैयारी नहीं वो. तो देखो कहने लगे, ऐसा है हम लोग कानपुर वासी थे ना, इतने साल हम लोग कानपुर में रहे, तो कानपुर का जो एक शिष्टाचार होता है, आओ भगत होती है. कोई मेहमान आपके घर में आता है तो बड़े भाई आओ भगत होती है, अरे पधारिए पधारो, पहले दरवाजा खोलने के बाद पधारिए, जल लाती हूँ आपके लिए, फिर चाय आप लेंगे कि कॉफी लेंगे, ये सब पहले बोल दिया जाता है. फिर आप किस काम के लिए आए हैं ये बाद में पूछा जाता है. हाँ, तो भाई उन्होंने ये कहा, देखो ऐसा है कि बसंत का जो एक स्वभाव है वो हमारे उधर लखनऊ वाले लोगों का, नवाबों का है, उत्तर प्रदेश का. और भी जरा थोड़ा सा अच्छे से बोलती हूँ. रे रे कैसे आप आए, आप सब कुशल तो हैं, आपका सब प्रवास अच्छा रहा, बड़े थके होंगे, मैं आपको कुछ पानी वानी देती हूँ. मतलब आने के बाद हाँ क्या काम है. ये जो वो जो पेस ऑफ लाइफ वहाँ की जो है वो अलग है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट पहले ले करके जब गए दरवाजा खोला. हाँ हाँ, तो मैं काय मुद्दा है तुमसा, क्या तो आपको कहना है जरा बताइए, क्योंकि देखिए वो आपको भी जाना है हमको भी जाना है. काय जे सांगायचं ते सांगा लवकर, आणखीन मग तुम्ही तुमचं तुम्हाला काम आहे मलाही काम आहे, आपण खतम करू हे गोष्ट. पाणी कॉफी चाय के लिए कोई समय नाही वहां पे. तो वो चंचल प्रकृति का राग है, ये अपना बिल्कुल. हाँ, अब सबको समय है बहुत अच्छे से, आप भी बैठ जाइए मैं भी बैठ जाता हूँ आपके साथ में, ये वाला हिसाब है. तो देखिए उसका स्वभाव अलग हो गया, स्वर वही रहे, कहाँ रुक रहे हैं कहाँ नहीं रुक रहे हैं, किस ढंग से आ आ, 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 आ मुर्की ले ली, आ, 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 आ आई आई आई, ये भाव नहीं है वहां पे. तो कहने का मतलब ये जो है, यहां पे ये फ्रेजेस से बातें होंगी, स्वर वाक्य से होगा, एक 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 स्वर में करेंगे तो वो राग आपको उसकी प्योरिटी नहीं दिखाई देगी. जब राग शुद्ध नहीं रहेगा तो उसमें से इमोशंस कैसे जाएंगे शुद्ध. देखिए बात समझिए, जब राग की शुद्धता को आप यदि उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे तभी तो वो शुद्ध भाव होकर के आपको वैसे दिखाई देगा, उसमें मिक्सचर करने लगेंगे तो गड़बड़ हो गया ना. ये हमको यहां पे कहना था. तो दे आर वेरी अलर्ट. राग वाचक आगरे घराने के कोई जो गायक होंगे वो फटाफट बिल्कुल यही राग है, वो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता. लेकिन कुछ घराने के लोग ऐसे हैं कि काफी देर तक सोचना पड़ता है कि ये क्या चल रहा है, कौन सा राग कहा जाए, इसमें ये कोई बात ही नहीं है, वेरी परफेक्ट. अच्छा एक और इसमें विशेष, सा इज द बेसिक नोट ऑन विच द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ राग रेस्ट्स. भैया ठीक है, ये आधार स्वर कहा गया है. इन आगरा घराना व्हाइल सिंगिंग द षड्ज द पावर ऑफ द वॉइस एंड इट्स resonance are used to emphasize the Shadj and establish it in the audience mind during the course of the performance. देखिए कोई जब शुरू करते हैं तो ऐसा हम लोग नहीं पहले कोई ऐसा साठ बैठा देते हैं, ऐसा नहीं करते. उसको या तो रे से लेंगे या नी से लेंगे. नो, आगरा घराना हा करके चालू करेंगे. दिस इज सा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई उसमें डाउट्स नहीं. इनफैक्ट द आगरा घराना प्लेसेस, अभी हम लोग सुनेंगे. इनफैक्ट द आगरा घराना प्लेसेस ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन डेवलपिंग फोर्सफुलनेस एंड डीपनेस इन द वॉइस सो दैट द नोट्स आर पावरफुल, रेजोनेंट एंड कैपेबल ऑफ बीइंग कैरीड टू द एंटायर ऑडियंस प्रेजेंट इन द हॉल. आवाज में ऐसी मजबूती कि जो हॉल में जो श्रोता बैठे हैं उनके सबके दिमाग के ऊपर इनका आवाज हावी हो जाए, सर के ऊपर बैठ जाए. अरे बाप रे, ये बहुत कोई लंबा चौड़ा महल बनाते हैं ये लोग. वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल फीचर्स ऑफ द आगरा गायकी इज इट्स लयकारी के बारे में अब थोड़ा सा. द आगरा स्टाइल ऑफ सिंगिंग लेज ग्रेट स्ट्रेस ऑन द लय aspect, which is बहुत ही clear है because of the Drupad Dhamar. The skilled singer therefore has to have control over the taal and uses the forcefulness of the theka and the divisions of the taal to ornament the words. ये लोग बोल बांट बहुत करते हैं. केवल सम पे पहुंचने की बात नहीं है. रीचिंग द सम इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, हाउ इज वेरी बिग थिंग. वो कैसे पहुंच रहे हैं, इसके मतलब आवर्तन चालू होने के बाद उन्होंने जो वो भरना चालू किया और वो जो मैटर वहां पे जो चल रहा था और फिर वो जब towards the end of the cycle of that ताल मुखड़ा, उसको मुखड़े को कैसे उन्होंने लपेट के वो सम पे कैसे आए, ये वहां पे विशेष बात है. एक बात फिर ऐसा जब होता है the listener can anticipate the coming of the sum. इसकी भी एक बात बताएंगे. because of the indications that are given and thus arrival of some is aesthetically very pleasing and the audience's enjoyment is heightened through the this rapport with the musician. अरे हम चाह रहे थे कि वो ऐसे ही सम पे आवे, वो आ गया. डोंबिवली में शिवानंद संगीत प्रतिष्ठान करके है, वहां पे डोंबिवली में हमारे पंडित गजानन बुआ जोशी जी का वहां पे ऐसा हम कहते हैं कि वहां पे उनका गढ़ है. वहां पे जो गायक हैं और जो सुनने वाले हैं वो भी एक ही दिमाग से सुनते हैं, उनको एक ही स्टाइल समझ में आती है, वो है ग्वालियर गायकी. तो ये मैं क्यों बात कर रही हूं, डोंबिवली में आपको यदि देखना हो तो आप जाइए उल्लास कशाड़कर जी का जब वहां पे कार्यक्रम होता है, या शुभदा पराडकर जी का होता है, या मेरा होता है, मैं अभी जाने वाली हूँ 3 अप्रैल को, तो वहां के जो ऑडियंस है वो ऐसे ऐसे देखता, हाँ ठीक चल रहा है, ये लय हो गई, लय भी धिन धिन ऐसे नहीं होती, क्योंकि सो जाएंगे वो लोग. धिन धिन धा. अच्छा, अब वही पारंपरिक हमने रचनाएं गाई और चालू किया हमने और वो समझ जाते हैं कि हाँ ये सम पे बहुत अच्छा आ रही हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, ऑडियंस वाले वो मुखड़ा हमारे साथ में गाने लगेंगे. हाँ बहुत बिल्कुल सही, हम यही सोच रहे थे आप ऐसे ही करेंगे. हाँ ये होता है वहां पे. द ऑडियंस ऑल्सो स्टार्ट सिंगिंग द मुखड़ा बिकॉज दे एंटिसिपेट नाउ दिस सम इज कमिंग लाइक दिस. आई नो ही और शी वॉट एवर whosoever the artist is, बहुत अच्छा आ रहा है भैया, हम भी गा देते, क्या 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 बात हो गई. वो उसके साथ में आ जाता है. तो कहने का मतलब यह है कि ये एंटिसिपेट करना. सो बिल्डिंग अप द ऑफ द एक्सपेक्टेशन इन द लिसनर्स माइंड एंड कमिंग टू द सम आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. ये जो बिल्डिंग अप होता है ना आवर्तन, और फिर आहा क्या बात, वाह, वो खत्म हुआ दूसरा आवर्तन चालू, तो ये चलता रहता है. सो दिस घराना डज नॉट यूज अति विलंबित लय, जैसे मैंने अभी कहा. सर्टन तालाज, झूमरा, तिलवाड़ा, तीन ताल और एक ताल, ये अलग अलग ताल हैं. तिलवाड़ा और झूमरा उन लोगों के बड़े प्रिय. आड़ा चौताल या आगरे घराने के ताल हैं, झपताल है, बहुत वैरायटी ऑफ तालाज दे यूज. एंड ऑफ कोर्स द मध्य लय इज प्रेफरेबल फॉर देम. इन द आगरा घराना द बंदिश ऑल्सो प्लेज द सेम रोल एज इन द ग्वालियर गायकी. आगरा और ग्वालियर बहुत नजदीक नजदीक है, जैसे वहां पे भी आगरा ग्वालियर बहुत नजदीक है ना, शहर दोनों, वैसे घराने भी, घराने के कैरेक्टरिस्टिक्स में, विशेषताओं में भी बहुत नजदीक बातें आती हैं. एंड इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस दोनों में ही. द प्योरिटी ऑफ द बंदिश फॉर्म्स द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द परफॉर्मेंस एंड द एंटायर ख्याल इज डेवलप्ड ऑन दिस बेसिस. जो बंदिश गाई गई हो उस बंदिश के ही, बंदिश की बढ़त, भाई बंदिश देखो और गाओ, तुमको राग के नियम की क्या जरूरत है. बंदिश में आपको नियम दिखाई देते हैं, उसको देखो और गाओ, बढ़त करो. तो बंदिश को लेकर के बढ़त होती है. अच्छा, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आगरा घराना's म्यूजिशियंस वॉइस विच फर्स्ट स्ट्राइक द वॉइस इज लो पिच्ड, बहुत नीचे. जब फोर्सफुलनेस होगा, देखिए पावर चाहिए उनको आवाज में, डीपनेस चाहिए है, कहते हैं कि पावर पावर चाहिए, तो फिर वो ऊपर कैसे पिच में जब गाएंगे तो आवाज जितनी एक्सपैंड होती है नीचे, वो ऊपर जाके तो ऐसी ऐसी नुकीली होती जाती, शार्प होती जाती, वहां जाकर के ऐसे तो नहीं गा सकते. तो इसीलिए ये लो पिच्ड में जितने भी ये लोग गायक होंगे, जो और घराने के लोगों का जो सुर होगा उसका, उससे एक दो तीन स्वर नीचे लेंगे. लो पिच्ड एंड एग्जिबिट्स अ ग्रफनेस, अब आप सुनेंगे इनका, और इवन अ हार्शनेस रादर देन अटेम्प्टिंग टू बी सॉफ्ट और स्वीट. भाई हमको भारदस्त, गंभीर, हमको थोड़ा सा फोर्स लाना है उस आवाज में, तो फिर स्वीटनेस कहाँ जाएगी, उसमें कहाँ से आ सकती है. अब इनके शिष्य परिवारों में आप लोगों को कुछ नाम पता हो तो बोलिए. कोई पता है क्या? फैयाज हुसैन खान साहब तो मैंने पहले ही बोल दिया. खादिम हुसैन खान साहब, राइट. अब आजकल जो हैं, दिनकर कैकिनी जी हैं, पंडित दिनकर कैकिनी जी हैं, ललित राव हैं, खादिम हुसैन खान साहब की शिष्या हैं वो. गिंडे जी हुआ करते थे, उन्होंने अन्ना साहब मतलब आचार्य रतन जनकर जी से सीखा. रतन जनकर जी का भी हम लोग आपको सुनाने वाले हैं. और राम मराठे जी, रामभाऊ मराठे. अब देखिए एक और यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं बोलती हूँ गजानन बुआ जोशी जी के बारे में. गजानन बुआ जोशी जी अपने पिताजी से सीखे, जो कि ग्वालियर घराने के ही थे, लेकिन उनको ये समझ में आया कि भाई, समझ में क्या आया, वो इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि जब वो अपने को काफ़ी इस्टेब्लिश कर चुके थे ग्वालियर घराने में एज अ वायोलिनिस्ट एंड एज अ सिंगर, उन्होंने विलायत हुसैन खान साहब का सुना, फैयाज खान साहब का सुना, कहने इसमें भी तो नोमतोम तो बहुत अच्छा है, हमको ये सीखना है. तो वो उनके पास चले गए, आगरे घराने की भी तालीम उन्होंने ली. उनके उनके गाने में आप देखेंगे कि आगरा घराना है, ग्वालियर घराने के तो वो थे ही थे, उनके पिताजी ग्वालियर घराने के, तो उन्होंने उनको सिखाया, आगरा घराने की उन्होंने तालीम ली, फिर एक जयपुर घराने जी के कुछ बातें सुनी, अरे ये तो ये हमारे पास नहीं है। तो अब आप सोचिए, एक व्यक्ति तीन घरानों की विशेषताएं अपना आत्मसात करता है, ले लेता है, खा लेता है, पचा लेता है, डाइजेस्ट कर सकता है। ये बहुत मुश्किल बात होती है, केवल ऊपरी लेवल का नहीं, जरा अच्छे से। और जब मैं जाती थी उनके यहाँ सीखने के लिए, तो वो कहते थे, देखो आज वीणा मैं तुमको आज एक राग सिखाऊंगा, उसमें आगरा और ग्वालियर घराने की बात नहीं आएगी, और भी साफ बोलती हूँ, जो ये राग सिखाने वाला हूँ उसमें आगरा और ग्वालियर की बू नहीं आएगी, गंध नहीं आएगी, केवल जयपुर सुनाता हूँ। आज तुमको मैं सुनाता हूँ जयपुर और आगरा का नहीं होगा, आज केवल ग्वालियर होगा। दैट मीन्स कंपार्टमेंट कर दिया उन्होंने। जस्ट थिंक, जस्ट इमेजिन कि इतना उनके दिमाग में हर एक घराने में कैसे कैसे बातें होती हैं, ये उनके दिमाग में उन्होंने इतना स्पष्टता से उसको हासिल किया था। तो रामभाव मराठे जी के भी गाने में आप देखेंगे कि ग्वालियर, आगरा और जयपुर है। उल्हास कशाळकर जी रामभाव मराठे जी से सीखे 8-7-8 साल, उसके बाद फिर गजानन बुआ जी से सीखे 10-12 साल। तो उनके गाने में आप तीन घरानों का मेल देखेंगे। तीन घरानों का मेल होने के बाद उन्होंने अपना एक उसका कुछ अच्छा एक मिक्सचर बना करके वो प्रेजेंटेशन आप उनका सुनेंगे। तो अब हम लोग सुनते हैं, पहले क्या फैयाज खान साहब का, हाँ फैयाज खान साहब जी की आप आवाज देखिए।
हाँ
जोशीला गाना, ये एक छोटा सा नमूना था, लेकिन इनकी नोमतोम सुनना चाहिए, इनकी लयकारी देखने लायक है। अब हम लोग सुनते हैं रतन जनकर जी का।
Na 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 na
कॉम्पोजिशंस बंदिशें जो करते थे जैसे मन रंग भाव रंग प्रेम रंग ये जो ऐसे अपनी उन्होंने रचनाओं के बीच में ऐसा कुछ रखते हैं कि जो वो उस रचनाकार का पेटेंट नाम है ऐसा समझ लीजिए. तो इनका सुजान और दिनकर कैकिणी जी ने जो किया उन्होंने उसका दिन रंग रखा है. अब हम लोग कौन सा किसका सुन गुंडे जी का सुन रहे हैं. जो कुछ अतः नेक्स्ट कैकिनी जी का हम लोग ये तो कामोद था, कैकिनी जी का हम लोग नोम तोम के आलाप कुछ सुनते हैं जो शुरू में मतलब अभी हमको लगता है उसमें बंदिश चालू नहीं है,
Thank you.
खादिम हुसैन खान साहब से भी इन्होंने लिया है तालीम लिया फिर जी से
Yeah.
वॉइस है नहीं, तो हमको लगता है जब बढ़ी है और इसीलिए वो आवाज की भी थोड़ी सी बड़ी हुई है। कॉपिंग में ऐसा होता है ना। ओके, आगरा खत्म हो गया। अब हम लोग जरा थोड़ा सा जल्दी काम करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट इज अतरौली, जयपुर अतरौली। केवल जयपुर घराना भी बolte हैं, सम पीपल डू से जयपुर अतरौली और अतरौली जयपुर, जो कुछ भी कह दीजिए, आगे इसको पीछे उसको। दिस इज वन ऑफ द मेजर घरानास इन एग्जिस्टेंस एंड इज एसोसिएटेड विद अलादिया खान साहब। ये भी नाम सुना होगा, अलादिया खान साहब, द ग्रेट सिंगर ऑफ द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। द मास्टर्स फैमिली ओरिजिनली बिलोंग टू अतरौली, अतरौली इज नियर अलीगढ़, and later migrated to a small village near Jaipur, where he found employment at the Maharajas. Ye sabhi Raj Darbar ke gayak hua karte the. And this is why it is called Jaipur Atrauli Gharana. Phir wahi baat. Aladhya Khan's ancestors were Dhrupad singers. So naturally he himself was trained in both styles, that is Dhrupad and ख्याल। अब आपने ये समझ में आपको आ रहा होगा कि आगरा, जयपुर और ग्वालियर ये सब पहले ध्रुपद गायक थे किराना को छोड़ के। ओके, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द जयपुर गायकी कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज इट्स कॉम्प्लेक्स एंड लिल्टिंग मेलोडिक फॉर्म। ताल क्या चल रहा है, ताल की लय क्या चल रही है, राग कौन चल रहा है, जैसे वो पहली भुजाओ, हम कुछ बोल दे आप समझो, काफी देर तक राग समझ में ही नहीं आता है। क्यों? द वे दे प्रेजेंटेड नंबर वन और नंबर टू, अप्रचलित राग, जिन्होंने कभी कुछ सुना नहीं होगा ऐसे रागों का उनके उसमें प्रचलन है। जोड़ राग, सीधा राग नहीं गाएंगे, जो सिद्ध राग यमन नहीं गाएंगे, दुर्गा कल्याण, हेम कल्याण, ऐसा। सो दिस घराना अचीव्स अ हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन स्वर एंड लय, बिल्कुल स्वर और लय से चिपक के चलती है, स्वर और लय, लय और स्वर। अब कैसे क्या है देखिए, द प्रोग्रेस ऑफ अ राग और मेलोडी इज मार्क्ड बाय अ कंटिन्यूअस रिदमिक स्विंग, and the rhythm is observed not only on the important beat such as the sam but also in between the matras. Keval sam pe aana to bahut theek hai, lekin wo jo beech beech ke khand hai matraon ke, usko bhi wo hamesha dimag mein rakhte hue chalte hain, wo ek swing jaisa hai, aisa aisa aise 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 chal raha hai. The badhat is very clear and is done in short sequences, each lasting for an avartan. Lambe vakya kahenge lekin pehle ek do ek hi avartan mein, ek 5-6 avartan mein unke chote chote pieces honge, lekin wo ek hi avartan mein kahe jayenge. Ye ek baat. Tans are also very intricate. सीधा सीधे तरीके से नहीं। द टर्म फिलिग्री लाइक वर्कमैनशिप इज ऑफन यूज इन द कॉन्टेक्स ऑफ द जयपुर घराना सिंगिंग, कशीदाकारी, एम्ब्रॉयडर्ड, वाह वाह क्या सुंदर काम किया, बारीक बारीक काम। मैं इनकी गायकी को ऐसे समझती हूं कि जैसे एक अजगर होता है वो ऐसे ऐसे जो धीरे 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 चलता है वो, अरे वहां तक पहुंच गया, ओ आई सी, उसकी जो चाल है ना वो इतनी स्मूथ है स्वर और लय की दृष्टि से, तो वो जो राग की बढ़त करते हैं वो आपको ऐसे झूमने को मौका देती है, क्योंकि स्वर के साथ लय के साथ में स्वर है या स्वर के साथ में लय है, ये जो ऐसा उन लोगों का जो वो इंटीग्रेशन है उसका जो मिला हुआ स्वरूप है वो एक देखने को मिलता है। और धीरे 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 वो बढ़त इतने खूबसूरती से करते हैं कि वो, अरे निषाद तक पहुंच गए, मध्य सप्तक के निषाद तक पहुंच गए, काफी पता ही नहीं चला, अच्छा इतना समय हो गया, अपने को उसका भान नहीं रहता, क्योंकि वो उनकी जो आलाप में भी वो कण का इतना सुंदर तरीके से प्रयोग करते हैं कि वो एक एक कण से धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए निषाद षड्ज तक पहुंच गए, फिर उसको ये जो उनका जो तरीका है बढ़त करने का, ये एक विशेष है। जयपुर घराना, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अप्रचलित रागों के विशेष विशेषता है इनकी। अब आपने कौन कौन से सुने, एक तो मैंने अभी बसंत बहार कहा, फिर बसंती केदार, हिंडोल बहार, भूप नट, केवल वैसे देखा जाए संपूर्ण मालकंस, बिहारी, भंखार, ये कभी राग सुने थे? नट नट कामोद, कामोद नाट, हेम कल्याण, दुर्गा कल्याण, ये ऐसे 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 राग गाएंगे लोग, बिहागड़ा, बहुत ऐसे। तो अप्रचलित रागों का इनके घराने में विशेष बात है। दिस घराना यूजेस ट्रेडिशनल बंदिशेस, पारंपरिक रचनाएं हैं। कोई घराने का उठ गया और चालू हो गया, हमको ऐसा लगता है हम बना लेते हैं, ना हम नहीं बनाते, वो जो पुरानी बंदिश है उन्हीं को गाओ पहले। द बढ़त इज संग यूजिंग द वावल आकार। आप जैसे उस दिन मैंने कहा था कि इन जयपुर घराने की ये विशेषता है कि हम आ में ही आलाप करेंगे, ए ई उ ओ यूज नहीं करेंगे। स्थाई हमने गा दी, स्थाई स्थाई में तो सभी वावल्स ही हैं, व्यंजन भी हैं, क वर्ग है, च वर्ग है, तवर्ग है, टवर्ग है, पवर्ग है, सभी है, क क ग च च ज या प प प जो कुछ भी उसमें एकार इकार उकार सब है, लेकिन स्थाई होने के बाद फिर हम आकार को ही, ये उनकी प्रतिज्ञा है, हम आकार में ही गाएंगे। उसके उल्टा किराने घराने के कहते नहीं, उसमें तो वो कंटिन्यूटी वो ब्रेक हो जाती है। देखिए अब यहाँ सोच में अलग आ गई ना, ये कहते नहीं, क्यों? उनका कहना आकार में गाने से उस राग का जो एक स्ट्रक्चरल डिजाइन बनता है वो ऐसा बस बनता है कि मैं कोई एक बहुत बड़ा महल बना रहा हूं। जयपुर घना जयपुर में महल ज्यादा होते हैं तो उनके घराने की गायकी को आप देखेंगे तो ऐसा कुछ लगता है कि बहुत कुछ भव्य है, कोई छोटी चीज नहीं है, कोई बड़ा आर्किटेक्चर वाला हम पैलेसेस देख रहे हैं, ऐसे कुछ एक आभास उनके घराने के गायकों में दिखाई देता है, ऐसा उनका। द विलंबित ख्याल इज एक्सपेंडेड स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने कहा धीरे धीरे, टिल इट रीचेस द हायर रजिस्टर एंड देयर फोर वहां पे क्या करते हैं ये, द अंतरा इज यूजुअली नॉट संग। अंतरा ये लोग नहीं गाते। दो बातें, अंतरे निर्माण नहीं हुए या अंतरे बने नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अंतरे के लिए अलग से जो मुखड़ा होगा, वो कहते हैं कि जब एक मुखड़ा है हमारे पास तो हम दूसरा का है मुखड़ा पकड़ें, एक ऐसा वो एक जस्टिफिकेशन देते हैं. दूसरी बात वो कहते हैं यदि हमको अंतरा गाना है तो ऐसे आर्टिस्ट कुछ कलाकारों को मैंने सुना है कि स्थाई गई तुरंत उसके साथ में अंतरा गा करके जैसे निपटाने वाली बात है भाई, नहीं तो तुरंत समीक्षक लिखने लगते हैं ना कि क्या ये अंतरा क्यों नहीं गाते हैं, इन लोगों को अंतरा याद नहीं था क्या, या अंतरा इनके घराने में रचा ही नहीं गया था क्या, तो लो भैया अंतरा तुमको चाहिए, लो अंतरा हो गया, अंतरा के नाम पे अंतरा हो गया. लेकिन अंतरे का जो रोल है उसका इनके साथ में कोई मत मायने नहीं रखता है. और उसके उसके लिए वो जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि एक हमारे पास मुखड़ा है स्थाई का, तो हम दूसरा उसी राग में उसी बंदिश में दो दो मुखड़े क्यों बनाएं. तो वो कुछ लोग अंतरा गाते हैं, कुछ लोग अंतरा नहीं भी गाते हैं. सो इन द कोर्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द विलंबित ख्याल इज ऑल्सो नॉट यूजुअली फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश. ये एक और एक चीज हो गई. बड़ा ख्याल गा दिया, उनका कहना है कि बड़े ख्याल में जो हमने एक वातावरण निर्मिति की है वो द्रुत ख्याल गाने से वो बहुत ही हल्कापन आ जाता है. तो वहीं हमने खत्म कर दिया, वो राग हमारा खत्म हो गया. एक इसमें और बात उनका कहना है कि जो हमने आलाप या बोल और तान जो ली थी वही चीजें हम द्रुत में फिर रिपीट करने का क्या काम है, एक बार हो गया हो गया. इसीलिए द्रुत बंदिशें उनके पास बहुत बार ऐसा देखा गया कि संपूर्ण मालकंस जैसे राग है या कौसी कानड़ा राग है. कौसी कानड़ा गाएंगे, अब बहुत लोग फरमाइश करते नहीं नहीं किशोरी ताई जी या मंसूर साहब जी आप थोड़ा सा नहीं द्रुत गाइए हम लोग को ऑडियंस, तो वो क्या करेंगे, संपूर्ण मालकंस का बड़ा ख्याल और मालकंस का छोटा ख्याल, कौसी कानड़े का बड़ा ख्याल और मालकंस का या कानड़ा का छोटा ख्याल. अब मोगूबाई जी ने माई ने कुछ कुछ बंदिशें बनाई हैं, द्रुत बंदिशें बनाई हैं उन्होंने, तो वो तो या तो फिर किशोरी ताई जी ने कहा होगा कि नहीं भाई द्रुत बंदिशें चाहिए हैं, तो कुछ उन्होंने भी बनाई हैं, कुछ माई ने भी बनाई हैं. तो लेकिन द्रुत बंदिशें इनके घराने में सुनाई नहीं देती. As far as tans are concerned, it's very complex, usually spiral-shaped or vakra in their form. बहुत सारे twists और turns होंगे. सीधा सीधा सपाट तान निरेगा मगर मगर हाँ नहीं जाएगा. वो निरेगा मरेगा रे मगा मगा रे गगा रे सानी सानी दा निरेगा निरे निपामा पामा गा मरे ऐसा ऐसा नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऊपर. आपको वो ऐसा भुला के रखेंगे उसमें कहाँ कहाँ क्या चल रहा है कि आपको वो पकड़ में ही ना आवे. ये एक विशेष और बात. अब कुछ रिकॉर्डिंग्स हम लोगों के पास हैं. हम लोगों के पास अभी मंसूर साहब जी का है. अच्छा हाँ, तो हम लोग इसमें मंसूर साहब जी का किसी ने सुना, मल्लिकार्जुन जी मंसूर, केसरबाई केरकर, मोगूबाई कुर्डीकर. अब जैसे मैंने कहा कि बुआ गजानन बुआ, तो उनके शिष्य रामभाव मराठे, उनका हम लोग सुनेंगे. कौन सा राग सुनेंगे उनका,
रामभाव का अड़ाना.
अड़ाना है तो फिर वो उन्होंने ग्वालियर जैसे गाया होगा. नहीं तो उनका नट कामोद भी एक है जो उन्होंने जयपुर के स्टाइल से गाया है. तो एनीवे श्रुति सडोलीकर जी हैं, अश्विनी भिड़े हैं, आरती अंकलीकर है. अब देखिए ये अश्विनी भिड़े या आरती अंकलीकर, इन लोगों का जो प्रस्तुतिकरण है वो प्योर जयपुर अतरौली नहीं है. उसका कारण ये है कि पहली बात किशोरी ताई जी ने भी अपने गायन में और भी नए नए प्रयोग किए हैं. वो एक 4-5 घंटे का एक विषय हो सकता है किशोरी ताई जी के गाने के ऊपर. तो उनका जो उनके पुरानी जो उनके कैसे एलपी रिकॉर्ड्स हैं अब जैसे वो पट बिहाग है, जौनपुरी है या भूप है, तो वो जो उनकी पुरानी बंदिशें हैं या पुराने, जो मैं ऐसा कहूँगी, उल्टा ऐसा कहूँगी, जो भूपनट या बसंती केदार, ये जो उनकी घराने की विशेष बंदिशें हैं, उसमें वो बिल्कुल अपने जयपुर घराने को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करती हैं। लेकिन यदि उनको कह दिया जाए यमन गाइए या भूप गाइए या बागेश्वरी गाइए, तो वो उसको अपने ढंग से गाती हैं। ओके, अश्विनी जी के गाने में किशोरी ताई जी का बहुत इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, इसीलिए मैं उनको कहूँगी ज़रूर जयपुर गायकी को बिलोंग करते हैं, लेकिन फ़र्क है। तो ये हम लोग थोड़ा सा मंसूर साहब जी का भी सुनते हैं। मंसूर साहब जी के भी गाने में एक ग्वालियर का गंध है, क्योंकि नीलकंठ कहते थे, नहीं ना अभ्यंकर नहीं, काय बरतेंसे नाव नहीं, निवृत्ति बुआ सरनाईक भी जयपुर अतरौली के ही हैं, निवृत्ति बुआ सरनाईक। लेकिन ये जो पहले थे उन्होंने ग्वालियर के घराने के लिए, उनसे उन्होंने तालीम ली है। अच्छा एक और, ये लोग मुखड़ा कभी बदलते नहीं, मुखड़े की जगह वही की वही रहेगी। मुखड़े की जगह मतलब यदि डेढ़ मात्रे का मुखड़ा है, तो दे आर गोइंग टू मेंटेन दैट डेढ़ मात्रा मुखड़ा, उसमें बदल नहीं करेंगे, जो हम लोग ग्वालियर घर आने वाले आगरा घर आने वाले करते हैं। मंसूर साहब आकार में हमेशा गाते थे, ऐसा नहीं है। केसर बाई केसर आ, मुगू बाई कुटीकर जी, किशोरी ताई आ, दूसरा ए मतलब
आ।
Okay, the last Gwalior Gharana, which is the oldest among all the Khyal Gayaki style. Gwalior Gharana ke baad hum khatam karte hain. Isko Aadya Gharana kehte hain, bilkul pehla. Gwalior Gharane mein aap log dekhenge bahut alag alag prakar ke rang hain. ग्वालियर घराने में एक और हम चीज कहेंगे, बहुत राग हई हैं, ताल, वैरायटी ऑफ ताल, चतरंग, त्रिवट, टप्पा, ये भी चीज आती हैं, राग माला, मतलब रिपर्टवार जो है हम लोगों का बहुत ज्यादा है. गीत प्रकारों में तराने, तराने तो पूछिए ही नहीं. तो ये एक ऐसे कहते हैं, उसमें आलाप है, बोल आलाप है, बहलावा है, मींड है, गमक है, खटका है, मुर्की. अब जब टप्पा आप गाएंगे, टप्पा हम लोग अभी आज सुनाएंगे, क्या हम लोग के पास है क्या मालिनी ताई जी का? नहीं है. ओके, टप्पा मैंने लिया भी नहीं है एक्चुअली, इसमें अभी केवल ख्याल की बातें कर रहे थे. टप्पा में केवल मुर्की, तान, खटका, यही सब चाहिए. वहां रुकने वाली कोई बात नहीं है, रुक जाएंगे तो वो ठुबरी हो जाएगी. तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि इसमें अलग अलग स्टाइल के अलग अलग कलाकार हैं. मतलब यदि एक कलाकार ग्वालियर घराने का आपने सुना, तो दूसरा ग्वालियर घराने का यदि आपने सुना होगा तो दिखाई देगा उसमें वो, लेकिन उसके स्टाइल प्रस्तुतिकरण जो है उसका अलग हो सकता है. अब जैसे हम आगे बताएंगे, विनायक बुआ पटवर्धन जी, आप लोग किन किन लोगों का नाम गिना सकते हैं, पुराने वाले लोग. पुराने मतलब 1900 के. विनायक बुआ पटवर्धन जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा तराने के उसमें. देन नारायण राव व्यास जी का सुना होगा. ओके, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी का सुना होगा. मालिनी राजूरकर का तो अभी है, लेकिन पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी और नारायण राव व्यास और विनायक बुआ पटवर्धन, इन तीनों के गुरु जो थे वो विष्णु दिगंबर पलुस्कर ही थे और ग्वालियर घराने को ही बिलोंग करते थे. और ऑफ कोर्स डीवी पलुस्कर, उनका तो सुना ही होगा, ठुमक चलत रामचंद्र भजन है उनके. तो इन तीनों में भी बहुत फर्क है, एंड दे लर्न फ्रॉम द सेम गुरु, लेकिन स्टाइल अलग है. तो ये मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ. द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द ग्वालियर स्टाइल ऑफ सिंगिंग हैज बीन नोटेड एज इट्स ल्यूसिडिटी एंड सिंप्लिसिटी. दिस घराना स्पेशलाइजेस इन सिंगिंग फेमिलियर एंड वेल नोन रागास, यमन, भैरव, सारंग, श्री, हमीर, बसंत, शंकरा, अलहिया, बिलावल, छायानट, गौड़ मल्हार, ऐसे बहुत से ब्याक. This approach is justified. वो क्यों ऐसा कहते हैं? On the grounds that as the listener is familiar with these ragas, one can concentrate on the style of singing and manner of presentation. राग ही बहुत मुश्किल हो गया तो वो कितने देर तक तो दिमाग के अंदर ये क्या थोड़ा सा ये कुछ बिहाग के जैसा है, लेकिन बीच में ये कुछ थोड़ा सा दूसरा कुछ हो रहा है. स्टाइल वो कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं इसकी तरफ आपकी नजर जाती नहीं है, क्योंकि वो आपका दिमाग अड़ गया वहीं पे कि ये कौन सा राग है. अच्छा, राग बताते भी नहीं ये लोग, ये और एक मुश्किल बात है, आप लोग ढूंढते रहो. तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम यमन, बिहाग सब लोग जानते हैं, वही राग गाएंगे. मोर ओवर बिकॉज ऑफ देयर सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेलोडिक मूवमेंट्स, दीज रागाज आर बड़ा राग, यमन, भैरव. तो कभी कभी कुछ लोग आ जाते हैं हमारे बिना ताई हमको सीखना है, हमने कहा यमन से चलो, यमन तो आ गया हमको. अच्छा, वो तो हो, यमन तो बहुत सीधा ही है, कुछ हमको जरा ऐसे नट काम हो जैसा कुछ, जरा सब ऐसे कुछ सिखाइए जो मतलब सावनी कल्याण वगैरह ऐसा. ये क्या यमन, क्या यमन के पीछे आगे कुछ होना चाहिए, मतलब सावनी कल्याण, कल्याण, हेम कल्याण, खेम कल्याण, एक खेम कल्याण भी है. एनीवे, तो बेसिकली सिद्ध राग जो हैं, जो सब जानते हैं, वो उसमें ग्वालियर घराना विश्वास रखता है. दिस घराना ऑल्सो पेज ग्रेट अटेंशन टू सिंगिंग ट्रेडिशनल ख्याल बंदिशेज. ये हमने आपको बताया, इट इज द बंदिश विच प्रोवाइड्स गाइडेंस एज टू हाउ द राग शुड बी संग. बंदिश देखो और गाओ. इनफैक्ट द बंदिश विच वॉज टॉट बाय द गुरु एंड इंस्ट्रक्शन इन सिंगिंग द आलाप और तान वॉज नॉट इम्पार्टेड टिल द प्यूपल till the student had learned several compositions in the same rag by heart. Yaman, ठीक है, आज ये बंदी सीखो भाई, चलो और थोड़ा सा और हम लोग यमन में नहीं, अब गुरु जी थोड़ा सा हम लोग नहीं, 20 बंदिशें तो आनी चाहिए, उसके आगे तो हम नहीं काम कुछ चालू करेंगे, हम दूसरा राग नहीं चालू करेंगे. 15-20 बंदिशें तुमको नहीं आएंगी एक राग में, तो फिर क्या करोगे तुम? एक बहुत अच्छी बात उसने कही विश्वनाथ जी ने परसों, कि दहेज में बंदिशें दी जाती थी. कैन यू इमेजिन? देख लीजिए, जिसको बहुत बंदिशें आती थी उसको कहा जाता था बड़ा ये श्रीमंत है, ही इज अ वेरी रिच पीपल, ही इज रिच आर्टिस्ट. रिच इन विच सेंस? अरे बात बहुत, उसके बाद बैंक अकाउंट बहुत है, उसके बाद बंदिशों का बैंक बैलेंस बहुत. तो बंदिशों का अधिक मात्रा में होना ये एक बहुत बड़ी बात हम लोगों के घराने में समझी जाती है, वो उसका कारण है. जितनी आपके पास बंदिशें होंगी वो राग और अलग अलग एंगल से आपको दिखाई देगा. एक ही बंदिश को आप लेकर के बैठे तो भाई उसकी गंधार में सम है, लेकिन और यदि कुछ अलग अलग लोगों ने बंदिशें बांधी हों तो उसको, अच्छा इसको ऐसे भी किया जा सकता है. ये हम लोगों को हिंट देता है बंदिश कि तुम ऐसा कर सकते हो आलाप में, वो देखने की नजर होनी चाहिए. ऑफ कोर्स राग विस्तार इज फ्रीक्वेंटली रिफर्ड टू एज फिलिंग द स्थाई, स्थाई भरो ऐसे कहा जाता है इन द ग्वालियर स्कूल, दस इंडिकेटिंग द फंडामेंटल रोल प्लेड बाय द बंदिश, पर्टिकुलरली इट्स फर्स्ट पार्ट दैट इज स्थाई. स्थाई भरना, अब क्या है ये स्थाई भरने का क्या अर्थ हुआ? स्थाई में जैसे आकार है, जैसे चलना वहां पे हो रहा है, उसी ढंग से हम आलाप को भी लें. जैसे मैं हमेशा इन लड़कियों को, अपने लड़कियों को बताती हूँ कि कोई भी बंदिश आपने सीखी उसके शब्द हटा दीजिए. मतलब क्या? जैसे बिल्कुल सुखदाता सबन के शंकर, सुखदाता सबन के शंकर, दिगंबर त्रंबकेश त्रिपुर हर त्राता, तू ही त्रिभुवन के शंकर सुखदाता. आ आ करीम करतार गरीब नवाज, सुनवर जवारी आज काज सवार, उसका आकार में ही हमने उसको लेना चालू कर दिया तो ये उसका आना जाना समझ में आ गया ना. आ आ, 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 आ. तान क्या है अंत में? आलाप को फास्ट कर दो तो वो तान हो जाती है, तान को स्लो कर दो तो वो आलाप हो जाता है. तो बड़ा ख्याल जब हम लोग सिखाते हैं, हमारे पिताजी जब हमें सिखाते थे, बड़े ख्याल में तो थोड़ा सा जरा चयन होता है ना, इसमें तो भागम भाग है जरा, तो उसमें भी वो कहते थे उसका शब्द निकाल दो, अब इसी को तुम आकार में गाओ, बल्कि उसी ढांचे में, तो तुमको अपने आप आलाप कैसे करना समझ में आ जाएगा. फिर उसके क्या करना, उसके छोटे छोटे पीसेस करना, इस पीस को उसके साथ में जोड़ो, उसके उसको इसके साथ में जोड़ो, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से आलाप बनने लगता है। मतलब इतनी बड़ी कॉपी लेकर के कोई ज़रूरत नहीं, आलाप नंबर वन, आलाप नंबर टू, आलाप नंबर थ्री, आलाप नंबर फोर, तान नंबर वन, तान नंबर टू, ये करने कोई ज़रूरत नहीं। नो कॉपी, कॉपी इज हियर, इसके अंदर डालते जाओ सब, इसको उससे जोड़ो, उसको पहला लाओ, उसको दूसरा करो, उसको दूसरे को पहला कर दो, अभी उसको पहले को दूसरा कर दो, तो ये सब कॉम्बिनेशंस बनते जाते हैं और ऐसे आलाप होता जाता है, ऐसी बढ़त होती है शुरू में। हाँ, फिर बाद में फिर उसको और कुछ कुछ करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो है कि स्थाई, हम लोगों ने स्थाई की जैसी चलन है उसको हमने देखा, वैसे हमने बढ़त करनी चालू कर दी। अब आ गया अंतरा, अंतरे में भी जैसे उसकी, जैसे मैंने कहा कि अंतरे का अपना एक अलग मुखड़ा होता है, उस मुखड़े को हमने बनाया तार षड्ज, षड्ज भरना जिसको कहते हैं, तो तार षड्ज के नज़दीक हमने जो कुछ भी आलाप थे वो किए, अंतरा ख़त्म किया, सम पे आ गए। नाउ दिस डिपेंड्स कि थोड़ा सा लय बढ़ानी है या वही लय रखनी है, और उसके अनुसार फिर आपने बहलावा चालू किया। बहलावा ये है कि स्थाई हो गई, अंतरा हो गया, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा उसमें स्पीड में जरा जो धीमे थे वो अब बहलावा में हमारी, हमारा स्पैन अब पूरा है। अब हमने आपको मंद्र, मध्य, तार सब इंट्रोड्यूस कर दिया, अब हम दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन यमन की, कल्याण की दुनिया में, और दूसरी दुनिया नहीं जाएंगे। लेकिन अब हमारा स्पैन जो है मंद्र, मध्य, तार सब जगह जा करके उसको हम आपको दिखाएंगे, तो दैट इज बहलावा, और थोड़ी सी स्पीड और गमक के साथ में। तो वो बहलावा ये एक ग्वालियर घराने की हम लोगों की विशेष बात है। फिर बोल आलाप है, तान है, बोलतान है। बोलतान भी ग्वालियर घराने में की जाती, किराने घराने में बोलतान होती ही नहीं है, आगरे घराने में बहुत सुंदर होती है। अच्छा, ग्वालियर घराने में एक और विशेष बात है कि स्थाई मुखड़े को ही केवल रिपीट नहीं किया जाता है, पूरी स्थाई ली जाती है। ये एक कायदा है, ये कायदा मतलब ये एक नियम है, ऐसे होनी चाहिए। और वो किस ढंग से आप पूरे स्थाई के अक्षरों को अच्छे से बैलेंस रखते हुए उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करें पूरे आवर्तन में, नहीं तो पहले कुछ जल्दी हो गई फिर बाद में अरे अभी तो दो मात्रा, तीन मात्रा रह गई, अब जल्दी से कुछ कर डालो, तो वो इक्वल उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है अक्षरों का वो यहाँ पे मायने रखता है। ये एक बात हो गई। द ग्वालियर स्टाइल इज पर्टिकुलरली नोटेड फॉर इट्स स्ट्रेट एंड सिंपल तान, सपाट तान, आरोही अवरोही छूट की तान, एकदम निरेगा मध्य निरेगा गए, ये एकदम निरेगा मध्य निरेगा सा, वक्र भी होती है लेकिन सपाट तान ये विशेष हम लोगों के। और ये सपाट तान तब ली जाती है जब मुखड़ा एकदम आ गया है और मुखड़े के साथ में एक सपाट लेकर के मुखड़ा पकड़ा, सम पे आ गए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आवर्तन उस समय वो लिस्नर ये, अच्छा वो ये तो हमने सोचा नहीं था ऐसा कुछ करेगा, तो वो एक अच्छा सुखद धक्का मिलता है। धक्का है, वो शॉकिंग है लेकिन सुखद है, दुखद नहीं है, तो अच्छा लगता है वो। कुछ कॉन्ट्रास्ट में भी बातें होती हैं तो वो अच्छी लगती हैं, कुछ एक के साथ मिल के आती हैं वो भी अच्छा ही है, लेकिन एकदम वाह वाह ये कुछ अलग था, ये हमने सोचा ही नहीं था, और वो उसने कर दिया, बहुत अच्छी हो गई बात। डबल नोट का एक हमने कहा था, ग ग ग ग ग ग ये जो एक डबल तान रे 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 ग ग ग म म म या रे रे ग ग म म, ये जो है डबल, एक ही स्वर को दो बार तीन बार चार बार बोलना, तो ये एक इसमें ये भी एक विशेष है। ऑल्दो अकॉर्डिंग टू थेरी यूजिंग द विलंबित लय इज द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस अ राग एंड एक्सपैंड इट, ऑफकोर्स एवरी घराना एक्सेप्ट दिस। ग्वालियर घराना सिंगर्स लाइक द मध्य लय फॉर सिंगिंग ख्याल्स टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन राग लय एंड द साहित्य वाइल प्रेजेंटिंग द बंदिश। मध्य लय हम लोग यूज करते हैं, इसके मतलब ये नहीं कि विलंबित यूज नहीं करते, लेकिन विलंबित वो धिन धिन धा गे गे ती र की ट, तो ये भी तब भी थोड़ा सा जरा विलंब ही है, इससे थोड़ा सा जरा चढ़ी हुई लय। उसका वो जस्टिफिकेशन क्या देते हैं कि दो मात्रे का आप जैसे धिन, तो ये धिन जैसे उन्होंने बताया कि कहीं कहीं ये दोनों चाहिए होता है, मतलब तबला दायां और बायां। कुछ ऐसे सिलेबल्स हैं कि जिसमें केवल बायां है, कुछ ऐसे सिलेबल्स हैं जिसमें दायां है, तो ये जब धिन बजता है तो वो धिन में गूंज है ना, तो वो धिन धिन, तो ये दो मात्रा के बीच में वो जो धिन है वो दूसरे मात्रे तक उसका गूंज टिकनी चाहिए, ये उसका वो ऐसा वो जस्टिफाई उसको करते हैं। यदि उसको बहुत अपने धिन तो इसमें क्या होता है धिन धिन, तो ये एक मात्रा दो मात्रा नहीं रहती, वो एक मात्रे के खंड होने लगते हैं, क्योंकि हमको वो लय रखनी है धिन धिन, क्योंकि इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए ना, तो वो मात्रा उपमात्रा हो जाती है जो कि अलाउड नहीं है, क्योंकि ताल यदि धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना जब 12 है तो उसके एक और दो मात्रे के बीच में चार चार क्यों लगा रहे हो भाई, तो अति विलंबित लय हमको हमारे घराने को ठीक नहीं है, हम ठीक नहीं समझते उसको। तो मध्य लय धा धिन धिन धा, ये एक ऐसी लय है धिन धा धा, ये तो ना तो चढ़ी है ना तो बहुत विलंबित है, बीच वाली कुछ लय, इसमें बहुत बंदिश है हमारे उसमें। फिर तिलवाड़ा झूमरा एकताल त्रिताल रूपक झपताल जितने भी ताल होते हैं सभी तालों में हमारे, और सभी तालों की अलग अलग लय में भी, आड़ा चौताल धिन त्रक दीना तू ना गत्ता त्रक दीना दी दीना धिन तीर किट धी ना तू ना, ऐसे लय में भी आड़ा चौताल है, तो अलग अलग ताल हैं और उस अलग अलग तालों के अलग अलग लय में भी बंदिशें हैं। अब हम लोग यहाँ पे केवल उल्लास, अब वैसे तो देखा जाए बालकृष्ण बुआ इचलकरण जी कर जी के, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी शिष्य रहे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने क्या काम किया है ये हमको बताने की जरूरत है क्या? विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने 100 ऐसे विद्यार्थियों को, मतलब ये कम से कम बता रही हूँ, 100 विद्यार्थी उनको अपने घर में रखा, उनको खान सॉरी काय करू तू जरा घे
कोण आहे माहीत नाही बहुतेक ते दिल्लीचं असेल
सॉरी वो बजने लगता तो ये यहाँ कुछ आवाज़ होने लगती पंडित जी महाराज जी उनको कहा जाता था पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के ऐसे असंख्य शिष्य हैं ये तो शिष्य परिवार तो उनका है ही है बहुत सबसे बड़ी बात उन्होंने ये जो की है कि समाज में संगीत को एक ऐसी प्रतिष्ठा दी है ऐसे कहा कि केवल संगीत कोठे पे नहीं रहता है नंबर वन नंबर टू उसमें शास्त्र है कुछ भी गाओ ऐसे नहीं चलता उसमें नियम है कानून है नंबर थ्री नोटेशन सिस्टम है हमारे पास हम लोग लिख सकते हैं हम लोग उसको पढ़ सकते हैं तो समाज में एक संगीत को स्थान दिया और दूसरी बात आज फीमेल सिंगर्स जो स्टेज पे गा रहे हैं वो भी उन्होंने काम किया है नंबर थ्री अब ये कहना नहीं चाहिए लेकिन ब्राह्मण समाज में से लड़कों को चुना और उनको अच्छी आदतें दी उनको पढ़ाया लिखाया जो जिनके पेरेंट्स चाहते थे कि नहीं ये मेरा लड़का पढ़े भी मेरे पिताजी उसी में ही वॉज वन ऑफ देम मेरे दादाजी ने ये कहा कि आप गाना तो ज़रूर सिखाइए लेकिन उसको अंग्रेजी ज़रूर आनी चाहिए उस समय ये कहा जाता था 1921 की बात है अंग्रेजी मतलब क्या मतलब आगे तक पढ़े वो कुछ तो वो पिताजी मेरे इंटरमीडिएट तक उनके साथ में रह करके उन्होंने कहा ठीक है वो स्कूल जाएगा कॉलेज जाएगा हमारे साथ में गाना भी करेगा लेकिन उसकी पढ़ाई मैं जारी रखूंगा तो ये भी उन्होंने किया नॉट ओनली दैट प्रेस चलाया पुस्तकें छापी तो कोई छापने वाला नहीं था ये पुस्तकें किस काम की हैं तो कह रहे चलिए हम ही प्रेस चला देते हैं अपना ही खुद ही प्रेस चला दिया मेंटेनेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये कौन काम करेगा ये भी बच्चों को सिखाया बच्चों को मतलब उनके शिष्यों को तो मतलब पूरी तरीके से उसको कलाकार बनाया समाज में कैसे रहना चाहिए संगीतकार ने कलाकार ने तो ये बहुत बड़ा उनका काम है बहुत बड़ा योगदान है कॉन्ट्रीब्यूशन है विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का उन्हीं के सुपुत्र डीवी पलुस्कर जी का हमारे पास काफ़ी रिकॉर्डिंग्स बजती रहती हैं रेडियो में फिर कृष्णराव पंडित जी एक ग्वालियर में हुआ करते थे उनके चिरंजीव उनके लड़के हैं लक्ष्मण पंडित जी उनकी भी रिकॉर्डिंग है उनका भी गाना एक ग्वालियर घराने में भी एक अलग सुगंध था उसका एक अलग बात थी उनके उसमें राजा भैया पूंछ वाले जी हैं उनके लड़के बाड़ा साहेब ये पूंछ करके एक जगह है इसीलिए वहाँ के उन्होंने पूंछ वाले कर दिया वो टप्पा बहुत उनके उनके पास टप्पों का बहुत संग्रह है आज हम मालिनी ताई राजूरकर जी का सुनते हैं उल्लास कशाळकर जी का सुनते हैं शरद साठे जी का है काशीनाथ शंकर बोर्डस जी मेरे भाई और मैं स्वयं ग्वालियर का को बिलोंग करती लेकिन एक बात देखिए ग्वालियर घराने के या किराना घराने के या आगरे घराने के जितने भी अलग अलग आर्टिस्ट हैं वो कुछ लोगों ने यदि उसमें अलग अलग इन्फ्लुएंस भले ही उनके शैली में आया हो लेकिन एक आवाज़ का लगाव या एक ताल या सुर का और साहित्य का अब देखिए जैसे हमने आपको कहा कि ग्वालियर घराने के उसमें भी आप देखेंगे कि शब्दों को उसके उच्चार जो हैं वो स्पष्ट होते हैं स्पष्ट होना मतलब ऐसा हमें नहीं कहना है कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा उसको इम्फेसाइज किया जाए लेकिन वो भाव लोगों तक पहुंच सकें इतना ज़रूर खबरदारी लेनी चाहिए तो ये
ग्वालियर घराने के बारे में हमने आपको थोड़ा सा बताया. आज हम लोग क्या कुछ उल्लास कशालकर का सुन रहे हैं? उल्लास कशालकर का सुनते हैं. उल्लास कशालकर जी का अभी 31 को NCPA में साजन मिलाप करके एक संस्था है, उसमें घराना सम्मेलन होता है, उसमें मैंने बात 2-3 बार गाया है. वो अभी वहाँ पे NCPA के टाटा थिएटर में होने वाला है उनका उल्लास जी का.
Yeah.